भागवतम चौथा स्कंद 27वां अध्याय। राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा। श्लोक क्रमांक 11। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: नारद मुनि ने कहा, हे राजा प्राचीन परिषद, तुम्हारी ही तरह है राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में फंस गया था। उसने देवताओं, पितरों तथा सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों द्वारा की, किंतु ये सारे यज्ञ नृशंस थे, क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी। तात्पर्य: इस श्लोक में नारद मुनि पुरंजन के चरित्र द्वारा राजा प्राचीन बहिष्यत को उपदेश देना चाहते हैं। वास्तव में यह सारा वर्णन राजा प्राचीन बहिष्यत के कार्यों का अलंकारमय भाषा में हुआ है। इस श्लोक में नारद स्पष्ट कहते हैं, यथा भवान, अर्थात तुम्हारी तरह है, जिससे सारा संदेह दूर हो जाता है कि, और यह सूचित होता है कि राजा पुरंजन स्वयं राजा प्राचीन बर्षत हैं। परम वैष्णव होने के नाते नारद मुनि यज्ञों में पशुवध को बंद कराना चाह रहे थे। वे जानते थे कि यदि वे राजा को यज्ञ बंद करने के लिए कहेंगे तो वह नहीं मानेगा, इसलिए वे पुरंजन का चरित्र सुना रहे थे। किंतु वे इस श्लोक में अपने मनोभाव को तुम्हारी तरह कहकर प्रकट कर देते थे। सामान्यतः कर्मी जनों को अनेक यज्ञ करने होते हैं और भविष्य के लिए उनके अनेक देवताओं की पूजा करनी होती है, तथा अनेक नेताओं, विचारकों तथा विज्ञानियों को प्रसन्न रखना होता है। तथाकथित वैज्ञानिक भावी पीढ़ियों की सुख सुविधा के लिए अत्यधिक उत्सुक दिखते हैं, इसलिए वे इंजनों, कारों, वायुयानों आदि को चलाने के लिए तरह तरह से ऊर्जा उत्पन्न करने के उपायों की खोज करने में प्रयास कर रहे हैं। अब तो पेट्रोल चुक रहा है। ये सारे कार्यकलाप भगवद गीता में वर्णित हैं। व्यवसायात्मका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं, वे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्प हैं और उनका लक्ष्य एक है। हे कुरुनंदन, जो लोग संकल्पशील नहीं है, उन्हीं की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। वास्तव में जो सब कुछ जानते हैं, वे कृष्ण भक्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु जो मूढ़ हैं, दुष्कृतना है और नराधम है, जो समस्त प्रकार की बुद्धि से रहित हैं, माया पहरत ज्ञान, और जो आसुरी जीवन बिताते हैं, आसुरम भावम आश्रित है, वे कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं दिखाते। फलतः वे नाना प्रकार के कर्मों में फंसते रहते हैं। ऐसे कार्य मुख्य रूप से पशुवध पर केंद्रित होते हैं। आधुनिक सभ्यता पशुवध पर केंद्रित है। कर्मी लोग विज्ञापित करते हैं कि बिना मांसाहार के विटामिन आपूर्ति संभव नहीं है और उनका बल घटेगा, अतः अपने को काम करने के योग्य बनाए रखने के लिए मांस खाना चाहिए, फिर इस मांस को पचाने के लिए मदिरा पीनी चाहिए, और फिर गधे की तरह घोर परिश्रम करने के लिए प्रचुर संभोग भी करना चाहिए। पशु वध की दो विधियां हैं। एक, धार्मिक यज्ञों के नाम पर पशुवध किया जाता है। बौद्ध धर्म को छोड़कर संसार के सारे धर्मों में पूजा के निमित्त पशुओं के वध किए जाने की व्यवस्था है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मांसाहारियों को कतिपय विधि विधानों के अनुसार काली मंदिर में बकरे की बलि देने की छूट है, जिसके मांस को खाया जा सकता है। इसी प्रकार चंडिका देवी की पूजा करके सुरा पीने की भी विधान है। इसका उद्देश्य प्रतिबंध है, किंतु लोगों ने सारे प्रतिबंधों की नीलांजलि दे दी है। वे नियमित रूप में मद्यशालाएं तथा कसाई घर खोलते जा रहे हैं और मद्यपान तथा मांसाहार करते रहते हैं। नारद मुनि जैसे वैष्णव आचार्य को ज्ञात था कि धर्म के नाम पर पशुओं का वध करने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहते हैं और जीवन के असली उद्देश्य को, जो परम धाम को जाता है, भूल जाते हैं। इस प्रकार नारद मुनि जब व्यास मुनि को श्रीमद् भागवत का उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने वेदों में वर्णित कर्म कांड विधियों की भर्त्सना की। वे व्यास से कहते हैं, जुगुप्सितम धर्म कृते नुशासितम स्वभावरक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारण जनः। सामान्यतः लोगों में भोग की सहज प्रवृत्ति होती है और तुमने तो धर्म के नाम पर उन्हें प्रोत्साहित किया है। यह गर्हित और निष्प्रयोजनीय है, क्योंकि वे तुम्हारे आदेशों से प्रदर्शित होते हैं। वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर लेते हैं और वर्जनाओं की तनिक भी परवाह नहीं करते। श्रील नारद ने व्यासदेव को अनेक उपवेदों का संकलन करने के लिए धिक्कारा है। नारद ने इनकी भर्त्सना की है, क्योंकि इनमें भक्ति का नामोल्लेख भी नहीं है। नारद के ही आदेशों पर व्यासदेव ने श्री भगवान की प्रत्यक्ष पूजा का विधान किया, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। निष्कर्ष ये है कि न तो श्री भगवान विष्णु और न ही उनका भक्त धर्म के नाम पर पशुवध की अनुमति देता है। निस्संदेह पशुवध को समाप्त करने के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया। तमोगुण के प्रभाव से हो धर्म के नाम पर पशुवध किया जाता है, जैसा कि भगवद गीता में इंगित किया जा रहा है, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यम एव च अयथा व्रत प्रजानाति बुद्धि या पार्थ राजसी अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रताः सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, वह अपूर्ण बुद्धि ही राजसी है, जो धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय में अंतर नहीं कर पाती। जो बुद्धि अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और मोह तथा अंधकार में रहकर सदैव विपरीत दिशा में लगी रहती है, उसे तामसी बुद्धि कहते हैं। जो तमोगुणी हैं, वो पशुओं के वध के लिए धार्मिक प्रणालियों में गुड़ते हैं। वास्तव में धर्म दिव्य है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है। हमें समस्त धर्मों का परित्याग करके उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, इस प्रकार भगवान उनके भक्त तथा प्रतिनिधि सभी दिव्य धर्म की शिक्षा देते हैं, जिसमें पशुवध के लिए कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय भारत में अनेक मिशनरियां धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। वे सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिसमें सन्यासी भी सम्मिलित हैं, मांस खाने को कहते हैं। लंबा तात्पर्य बात, अनुवाद दोहराइएगा। नारद मुनि ने कहा, हे राजा प्राचीन बहिष्यत, तुम्हारी ही तरह है राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में फंस गया था। उसने देवताओं, पितरों तथा सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों द्वारा की, किंतु ये सारे यज्ञ नृशंस थे, क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी। चक्षुरुन्मीलितम्येन। नारद मुनि राजा प्राचीन बहिष्यत को राजा पुरंजन की कथा सुनाए जा रहे हैं, और इस श्लोक में नारद मुनि यथा भवान इन दो शब्दों से ये साफ बता देते हैं कि वास्तव में राजा पुरंजन राजा प्राचीन बहिष्यत ही है, क्योंकि वो कहते हैं कि हे राजा प्राचीन बहिष्यत, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में फंस गया था। अगर सीधे सीधे नारद मुनि राजा प्राचीन बहिष्यत को कहते कि ऐसे यज्ञों में पशु की बलि चढ़ाना बंद कर दो, तो शायद राजा प्राचीन बहिष्यत इस बात को सुनते नहीं। लेकिन उन्होंने एक कहानी के माध्यम से, एक तथाकथित काल्पनिक कहानी के माध्यम से जब ये बात कह दी, तो धीरे धीरे से सत्य को वो व्यक्त कर रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि वास्तव में राजा प्राचीन बहिष्यत भी ऐसे ही कार्य करते थे। इसलिए राजा पुरंजन के कहानी के माध्यम से नारद मुनि ने उनको समझाने की इच्छा रखी। और यहां पर घोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नृशंस मतलब बहुत ही नीच, बहुत ही क्रूर। मतलब जब हम पशुओं की हत्या करते हैं, भले धार्मिक तथाकथित धार्मिक कार्यों के लिए भी क्यों न हो, ये बहुत ही एक नीच कार्य होता है। पशु मार कई ही, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है, तो ऐसे धार्मिक क्रियाएं खास करके कलयुग में वर्जित हैं। वेदों का उद्देश्य है कि जो पशुतुल्य मानव है उसको मनुष्य स्तर पर लाना, और मनुष्य स्तर पर लाकर फिर उसे दिव्य स्तर तक ले जाना। पशुतुल्य मनुष्य कौन होता है? जो पापी होता है, जो नाना प्रकार के पाप और वर्जित कार्य करता है, जैसे कि मांसाहार इत्यादि। और मनुष्य जीवन मतलब पाप रहित जीवन, या कम से कम धर्म के अनुसार जो व्यक्ति जीता है उसको मनुष्य कहते हैं। और फिर दिव्य स्तर में आना मतलब भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में स्थित होना। तो ऐसे तीन अवस्थाएं हैं मनुष्य समाज में, पशुतुल्य मनुष्य, मनुष्य और दिव्य अवस्था। तो अंततः वेदों का उद्देश्य है कि हम ये तीसरे स्तर पर पहुंच जाएं। वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः वेदांत कृत वेदविद् एव चाहम्। वेदों की रचना करने वाले, वेदांत की रचना करने वाले श्री कृष्ण हैं, और वेदों को पढ़ने का, जानने का, मंत्रों के उच्चारण को करने का उद्देश्य केवल यही है कि हम श्री कृष्ण को जान लें। तो सारे शास्त्रों का और बल्कि धर्म का भी उद्देश्य यही है कि हम श्री कृष्ण को जान लें। तो जब भगवान ने ये सृष्टि की रचना की तो उनको मालूम था कि ऐसे लोग होने वाले हैं जो कि मांसाहार करने ही वाले हैं, और आप उसको कितना भी कहेंगे वो मांस खाना बंद नहीं कर सकते। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, तो उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई या ऐसी व्यवस्था की है इन लोगों के लिए कि वो मांस खा सकें, लेकिन थोड़े विधि विधान और नियमों के अनुसार। उन्हें केवल अमुक दिवसों पर मांस खाने की अनुमति दी जाती थी, और वो भी उनको काली के मंदिर में जाकर काली देवी के सामने एक बकरी के निम्न श्रेणी के पशु का, गाय वगैरह के नहीं, एक निम्न श्रेणी के पशु जैसे कि बकरी का वध करने की अनुमति दी जाती थी। साथ साथ बकरी भी, साथ साथ वो मंत्र भी बोलने पड़ते थे। और धीरे 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 से ये विधि विधानों का पालन करने के बाद हो सकता है कई जन्मों के बाद वो व्यक्ति के होश ठिकाने आ जाते और वो समझ लेता कि ये तो बहुत बड़ा पाप है जो मैं कर रहा हूं, ऐसे नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से धीरे फिर वो मनुष्य स्तर पे आ सकता है। वैसे पुराने जमाने में, सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर में भी ऐसे बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि, जहां पर एक पशु जैसे कि घोड़ा हो या और कोई पशु हो, उनकी हत्या की जाती थी, उनकी बलि चढ़ाई जाती थी यज्ञ में। परंतु ये जो यज्ञ में पशु मारे जाते थे, उस समय में और आजकल के समय में बहुत अंतर है, क्योंकि उस समय जो पशुओं की हत्या हुआ करती थी, वो जो ब्राह्मण होते थे उस समय बड़े प्रामाणिक हुआ करते थे। और पशुओं की हत्या इसलिए हुआ करती थी कि जो ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण यज्ञ के समय किया था वो ठीक है या नहीं, प्रामाणिक ढंग से वो कहे गए हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा लेने के लिए ये पशुओं की हत्या की जाती थी। और अगर मंत्रों का उच्चारण वगैरह और सारे जो पद्धति है, विधि विधान है, उनका पालन बिल्कुल सही ढंग से हुआ होता तो फिर पशु पुनः जीवित होकर उसे मनुष्य शरीर मिल जाता, या तो फिर एक नवीन पशु का शरीर मिल जाता। तो इस प्रकार से उस जमाने के ब्राह्मण इतने शुद्ध थे कि वो एक निम्न श्रेणी के पशु को मनुष्य शरीर दे सकते थे केवल अपने मंत्रों के उच्चारण से, और फिर यज्ञ संपन्न हो जाता था। लेकिन अगर मंत्रों का उच्चारण सही नहीं होता और अगर ब्राह्मण शुद्ध नहीं होते तो फिर जो भी वहां पर पशुओं की हत्या की जाती थी वो वास्तव में बलि नहीं, वो यज्ञ नहीं, लेकिन वो पाप ठहरता था, और जो भी पशु हत्या का पाप होता है वो उनको लग जाता था। तो राजा प्राचीन भरिष्यत ने भी ऐसे कई पशुओं की हत्या की थी, और न जाने कितने पशुओं की हत्या के पाप उनके ऊपर लगे होंगे। और आगे चल के हम देखने वाले हैं कि नारद मुनि राजा प्राचीन भरिष्यत को एक दृश्य दिखाने वाले हैं अपनी योग शक्ति से, और वो आकाश में उन सारे पशुओं को प्रदर्शित करेंगे जिनकी हत्या राजा प्राचीन भरिष्यत ने की है, और कहेंगे कि देखो राजा प्राचीन भरिष्यत, तुमने जितने भी सारे पशुओं का वध किया है आज तक, वो सामने तुम्हारे आकाश में देखो, सब तुम्हारे आंखों के सामने, हजारों हजारों की संख्या में जो पशु थे सब उनके सामने दिखाई पड़ते थे। उस समय राजा प्राचीन भरिष्यत को बहुत भय हो गया कि अरे मैंने क्या किया है, कितना पाप मैंने किया है। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त जैसे नारद मुनि हर जगह जाकर लोगों को पाप करने से रोकते हैं, खास करके पशु हत्या, क्योंकि कलयुग में पाप का मतलब है पशु हत्या। पशु हत्या जैसे कि प्रभुपाद जी समाज में तात्पर्य में समझाते हैं, कलयुग का आधार ही पशु हत्या है। हम देखते हैं कि प्रत्येक चीज में आजकल मांस का मिश्रण पाया जाता है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है प्राय जिसमें मांस से कोई पशु का कोई एक पदार्थ ना हो, बहुत मुश्किल है आजकल मिलना। यहां पर भारत में शाकाहारियों की संख्या अधिक है, इसलिए हमें ऐसे कई वस्तु मिलते हैं जिनमें शायद पशु पदार्थ मिश्रित न हो। लेकिन हमें आश्चर्य होगा, थोड़े दिन पहले हमने एक ऐसे संस्था का एक प्रकाशन साहित्य पढ़ा जिसमें उन्होंने ऐसे 100-200 या से उससे भी अधिक ऐसे चीजों का वर्णन किया है जिसमें कोई ना कोई पशु पदार्थ मिला हुआ है जो कि मार्केट में मिलते हैं और जिनको हम शाकाहारी समझते हैं और हम लोग इसको खाते हैं। हमें जानते नहीं है कि कैसे, चाहे उसमें किसी पशु पदार्थ का मिश्रण होता है या तो फिर उस पदार्थ को बनाने के लिए जो पद्धति होती है उसमें या तो पशुओं के हड्डियों को प्रयोग किया जाता है या हड्डियों को चूर करके फिर उसको उस पदार्थ को शुद्ध करने के लिए कोई पद्धति इस्तेमाल की जाती है। तो इस प्रकार से किसी न किसी तरह से पशु के शरीर के पदार्थ जो है वो उसमें प्रयोग किए जाते हैं। कितने ऐसे चीजें हैं लेकिन हम जानते ही नहीं है। अगर आप विदेश में जाएं या विदेश का जो चीज है चीज जानते हैं वो खाएं तो उसमें पता है आपको क्या मिक्स होता है, उसमें गाय के अंथड़ियों के जो टुकड़े होते हैं वो मिश्रित होते हैं क्योंकि बनाने की पद्धति ऐसी होती है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो चीज बनाने के लिए, चीज मतलब समझे ना, चीज मतलब वो पनीर के जैसे जो अमूल चीज वगैरह मिलता है। तो यहां पर भारत में तो कम से कम ऐसे कहते हैं कि हम ये सब चीजें नहीं मिलाते हैं। तो अमूल फैक्ट्री वगैरह में जाकर सब लोगों ने ये देखा, खास करके भक्तों ने जाकर कि आपका चीज तो कम से कम इसमें कोई मिलावट नहीं है ना पशु पदार्थ की। तो वो जानते हैं कि यहाँ पर इतने सारे शाकाहारी हैं तो ऐसा करेंगे तो उनका पूरा धंधा ही बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़े सावधान रहते हैं लोग। लेकिन फिर भी ऐसे कई चीजें हैं जिसमें मिलावट होती है। और विदेशों में जब भी कुछ खरीदना होता है तो सबसे पहले डब्बे के पीछे देखना पड़ता है कि क्या लिखा है इसमें, क्या कौन सी चीजें हैं। वो कहते हैं शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, लेकिन पीछे देखेंगे तो कुछ ना कोई मिलावट होगा, कोई मांसाहारी चीज का, नॉन वेज चीज का। और ऐसे कई चीजें होते हैं जो उसमें लिखते नहीं है वो, लेकिन बनाने की पद्धति में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आजकल हर चीज में शक्कर में बनाने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, हड्डी, पशु की हड्डी इस्तेमाल करते हैं शक्कर बनाने के लिए। और शक्कर तो हम लोग रोज खाते हैं। हर चीज में आजकल, इसलिए प्रभुपाद जी ने सही बताया है कि कलयुग का आधार पशु हत्या हो गया है। और फिर पशु हत्या से आगे सब कुछ चलता है। फिर जब हम पशु हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, तो मांस को पचाने के लिए शराब चाहिए, और शराब से फिर हमें, शराब और मांस जब होता है तो और अधिक कार्य हमें करना पड़ता है, फिर और रजोगुणी हो जाते हैं, फिर संभोग चाहिए। तो इस प्रकार से पशु हत्या आजकल सब जगह फैल गई है। अगर केक में भी सब अंडे मिलाते हैं, हर चीज में अंडे मिलाते हैं, बिस्किट में भी हमने सुना अंडे मिलाते हैं, आइसक्रीम में अंडे मिलाते हैं, और शाकाहारी अंडे ऐसे भी विज्ञापन दिया जाता है, ये शाकाहारी अंडे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग ये गलत प्रचार किया जा रहा है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। बाहर जाके आइसक्रीम नहीं खाना है, बाहर के कई चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि ये लोग क्या क्या मिलाते हैं इसमें, केवल उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए ताकि बाहर के लोग उनको पसंद करें, कुछ भी कर देते हैं। आजकल पैसे के लिए व्यक्ति क्या नहीं करेगा, इसलिए हम देखते हैं कि चाहे कोई ब्राह्मण परिवार का हो, कैसे भी परिवार का क्यों ना हो, आजकल वो कोई भी कार्य करने के लिए लज्जित नहीं होता अगर उससे पैसे मिलते हैं तो। यहाँ बेलगाम में भी जो छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चे पैदा करके उसको बेचते हैं किसानों को और फैक्ट्रियों को, फिर उसको काट के मांस बनता है, मांस बेचा जाता है। तो यहाँ ब्राह्मण चलाते हैं, मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले, सबसे बड़ी फैक्ट्री जो यहाँ इसकी है बेलगाम में, वो ब्राह्मणों की है। और फिर सबसे देश में सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है उसका नाम दिया है वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर नाम दिया उन्होंने इस फैक्ट्री के लिए। तो वेंकटेश्वर के नाम पे ये सब चल रहा है। तो सबको लगता है वेंकटेश्वर है मतलब ये अच्छा होगा, कुछ हम खरीदेंगे। तो ऐसी चीजें सब चलती हैं यहां पर, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिनमें एक हमारे आधुनिक काल के मंत्री महोदया भी हैं जो कहती हैं कि हमें पशु पदार्थ छूना भी नहीं चाहिए, यहां तक दूध भी पीना पाप है। और दूसरी ओर ले जाते हैं, कहते हैं कि पशु को हमें छूना भी नहीं चाहिए क्योंकि पशु का दूध केवल गाय के बछड़े के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है, गाय का दूध खाना ये कोई पाप नहीं है, पीना भी पाप नहीं है। वास्तव में गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ मनुष्य के लिए भी है। कई बार लोग ये पूछते हैं कि गाय का दूध केवल बछड़े के लिए है तो मनुष्य को क्यों पीना चाहिए। वास्तव में अगर सारा दूध गाय का बछड़ा पी जाए तो बीमार पड़ जाएगा, पचन नहीं होगा उसे। क्योंकि बताया जाता है कि जो गाय का गाय के बछड़े का जो वजन होता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके 25% भी गाय दूध लेती है। दूध तो प्रचुर मात्रा में गाय देती है, लेकिन गाय के बछड़े का वजन जो होता है उसका केवल 10% दूध की आवश्यकता गाय के बछड़े को होती है। तो गाय के बछड़े का वजन अगर 25 किलो हुआ तो 2.5 लीटर दूध गाय के बछड़े को पीना चाहिए, उसे ज्यादा अधिक आवश्यकता नहीं है। लेकिन हो सकता है गाय 5 लीटर दे दिन में, 10 लीटर दे, तो बाकी दूध जो है वो गाय के बछड़े के लिए नहीं है, वो तो मनुष्य के लिए है। और ऐसे कई गाय हैं जैसे गीड़ इत्यादि जो कि 30 लीटर 40 लीटर भी देते हैं दिन में, तो क्या गाय का बछड़ा उतना दूध पी सकता है? नहीं पिएगा, बीमार हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा उसे। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन में दूध पीना, गाय का दूध पीना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हमारी बुद्धि उससे बनती है, आध्यात्मिक बुद्धि बनती है जिससे कि हम आध्यात्मिक विषयों को समझ सकते हैं। तो जब ऐसे घोर पशु हत्या होती है तो थोड़े लोग सोचते हैं कि पशुओं से संबंध हमें केवल कुछ भी पदार्थ नहीं लेना चाहिए। और मांसाहार की बात दूसरी है, लेकिन चमड़े के आजकल चीजें कितने लोग पहनते हैं, इतना कुछ हो गया है आजकल चमड़े का, बेल्ट हो, पर्स हो, जूते हो, हर जगह चमड़े के ये काम चल रहे हैं। हर छोटी छोटी चीज में आपको चमड़ा मिलेगा, बहुत ही आपको होशियार रहना पड़ता है हमें कहां चमड़ा हो ना हो। और इतना साधारण हमारे लिए बन गया है कि हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये भी चमड़ा है, ये भी वर्जित कार्य एक वस्तु है। आप मेरे खुद के जीवन का एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम पहले भक्त बने थे तो जैसे कि नए नए भक्त को होता है उत्साह ज्यादा होता है प्रचार करने के लिए, उत्साह कम नहीं होना चाहिए, बने रहना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा उत्साह से हम प्रचार करते हैं। तो एक बार शुरुआत में एक हमारे मित्र को हम प्रचार कर रहे थे बड़े जोर से, उसी के घर में रहते थे हम और उसको बहुत प्रचार करते थे। और बहुत बोलने के बाद फिर पशु हत्या पे या मांसाहार पे वगैरह प्रश्न आया और फिर दूसरा विषय बदल गया अन्य। और फिर जैसे प्रभुपाद की फिलॉसफी है, भगवद गीता इतनी शक्तिशाली है कि हर प्रश्न का जवाब है, तो जैसे जैसे वो विरोध करता गया मेरा मित्र और हम प्रश्न के उत्तर देते गए फटाफट फटाफट, उसको कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया। फिर आखिर में उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और फिर कहा, फिर तुम क्यों चमड़े के जूते पहनते हो? उस समय तक मैंने सोचा भी नहीं था कि वास्तव में मैं चमड़े के जूते, इतना साधारण हो गया था हमारा दैनिक जीवन में, सोचा नहीं था कि ये कोई अद्भुत चीज है। तो उस समय मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया, कुछ शब्द बोलने के लिए नहीं रहे मेरे पास। पहली बार, उसने महीनों तक मुझके साथ तर्क चलता था, रोज मुझे हैरान करता था वो, ये क्यों, वैसा क्यों, वैसे, हर प्रश्न का जवाब होता था मेरे पास, लेकिन ये प्रश्न का जवाब नहीं था। और फिर मैंने कहा, हाँ तुम सही हो, मेरी गलती है ये, तुम जीत गए। तो मैंने जूते लिए और बाहर खिड़की के बाहर जाके फेंक दिए। तुरंत उसी क्षण मुझे पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं, वास्तव में ये सही है। इसने जो कहा, हम इतने सारे पशु हत्या के कार्य, हम जो चीजें हैं, वस्तु हैं, हम इसको इस्तेमाल करने में इतने आदि हो गए हैं, इतनी आदत पड़ गई कि हम सोचते भी नहीं इनके बारे में कि इसके पीछे इतिहास क्या है, इसको कैसे बनाया गया है। और आजकल करोड़ों के रुपए में ये धंधा चल रहा है, इतने सारे बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हैं ये चमड़े के ऊपर। और यहां भी नीचे, इसी हमारे मंदिर के नीचे, पहले 50 साल पहले 100 साल पहले चमड़े बनाने की फैक्ट्री यहां हुआ करती थी। तो यहां ये इस बिल्डिंग में, इतने इस इमारत में इतने पाप की पूंजी है, और केवल यहां इतने साल भक्तों ने मिलकर नाम संकीर्तन किया है भगवान का, इसलिए यहां के पुण्य, यहां के पाप सब धुल गए हैं। और यहां का इलाका अभी खिल रहा है, सब जगह गुंठे का रेट बढ़ते जा रहा है, केवल यहां भक्त नाम संकीर्तन करते हैं। जब यहां पशु हत्या होती थी तो यह भूत बंगला कहलाता था, कोई गलती से भी यहां पास में नहीं आता था, केवल यहां लोग शौच करने आते थे इधर उधर, बस कुछ नहीं था वहां पर। तो कहने का मतलब है कि पशु हत्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में ऐसे के हर एक केंद्र में, हर एक जगह में घुस गई है। आज आपके घर में जाके देखिए, आप परीक्षा कीजिए, छोटी छोटी वस्तु को देखिए कि पशु हत्या या पशु हत्या से संबंधित या पशु के शरीर से संबंधित कौन से वस्तुएं आपके घर में हैं। आपके बेल्ट, आपके पर्स, आपके जूते, आपके नाना प्रकार और कोई चीजें होंगी, छोटी छोटी जो डायरी होते हैं उसमें भी कभी कभी ये लोग मिलाते हैं। और खाने के पदार्थ, रसोई घर में जाके देखिए कौन सी चीजें हैं, उनका लिस्ट हम देख कभी आश्चर्यचकित हो गए, 100-200 लिस्ट, ऐसे चीजों की लिस्ट। और विदेशों में तो असंभव है प्राय, इसलिए वास्तव में हम बीमारी पड़ गए इसकी वजह से, क्योंकि जब बाहर जाते थे तो कुछ खाना नहीं, खाने को डर लगता है, क्योंकि पता नहीं चलता ये लोग शाकाहारी बोलते हैं लेकिन इसमें क्या मिलाते हैं। एरोप्लेन में भी जाते हैं तो फल भी देते हैं तो फल खाने के लिए भी डर लगता है, क्योंकि न जाने वो कहाँ रखा है उन्होंने वो फल, किसके बीच में क्या क्या किस किस चीज के लगाया, उस हाथ से फिर वो फल को हाथ लगाते हैं, क्या करते हैं। तो आजकल स्थिति ऐसे बन गई है, और पशु नॉन वेजिटेरियन वगैरह खाना इतना साधारण सा माना गया है कि कोई अगर शाकाहारी है तो उसे एकदम पिछड़ा हुआ आदमी समझते हैं कि आज समय बदल रहा है, तुम्हें खाना चाहिए, उसमें क्या है। और खास करके अगर ये भ्रांति है, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विटामिन इत्यादि सब मिलते हैं, नहीं खाते हो। अभी की बात है, बंबई में जब हम थे तो एक लड़का आया, बेचारा 10वीं कक्षा में है, बहुत अच्छे ढंग से भक्ति कर रहा था, और उसके घर में मांस नहीं खाना ये वर्जित है, समझे ना, मतलब रोज सुबह शाम मांसाहार होता है, नहीं खाना मतलब पाप है उनके घर में, ऐसे घर से ये बच्चा आया। और फिर उसने पाप, उसने मांस खाना छोड़ दिया, घर में बहुत विरोध था लेकिन उसने फिर भी छोड़ दिया, अच्छा लड़का है बहुत। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसको कोई और वजह से कोई बीमारी हो गई, क्या सर में, स्कूल में गया तो चक्कर आ गया, और जब चक्कर आया तो टीचर ने घर रिपोर्ट कर दिया कि इसको चक्कर आया। तो पिताजी इतने गुस्से हुए, आग बबूले हो गए, इतने गुस्से हो गए, मंदिर को इतना चिल्ला रहे, इतना चिल्लाए, इतना तमाशा कर दिया, और एक बच्चा बेचारा रोते रोते आ गया मंदिर में, रोना ही बंद नहीं किया, इतना उसे सताया, आज से मांस खाना ही पड़ेगा। और उसको सामने बिठा के प्लेट रखा, वो खाओ खाओ खाओ, उसे नहीं खाया। तो ऐसे सब परिस्थिति, सोचते विटामिन नहीं है क्या, हाथी शाकाहारी और शक्तिशाली नहीं है, हाथी तो शेर को भी आराम से मार सकता है। एक बार हमारे भक्त विदेश में थे, बता रहे थे कि ऐसे ही उनको किसी ने दावा किया कि चलो तुम लोग शाकाहारी हो, तुम्हारे अंदर कुछ शक्ति नहीं, कुछ नहीं। तो उसने कहा ठीक है, हम देखते हैं किसमें ज्यादा शक्ति है। तो उन्होंने बैठक किया, क्या कहते हैं, उठक दंड बैठक, बोले हम कितना कर सकते हैं देखते हैं, हम दोनों में स्पर्धा करते हैं देखते हैं किसमें शक्ति ज्यादा है। तो वो तो बड़ा मांसाहारी शराब पीने वाला था, उसने कहा ठीक है चलो देखते हैं। तो दोनों ने किया और वो मांस खाने वाला व्यक्ति करते गया थक गया, वो इतना थक गया, फिर भक्त चले जा रहा था करते जा रहा था, और उसने देखा कि वो तो थक रहा था बहुत, फिर भक्त चले जा रहा करे जा रहा, तो उसने भी और किया, फिर बहुत थकावट हो रही थी, फिर भी अपने आप को किया, फिर वो गिर पड़ा उधर, लेकिन भक्त फिर भी करते जा रहा था। फिर भक्त वो लेटे हुए उस व्यक्ति को बोल देखा अभी कौन ज्यादा शक्तिशाली है, माना है ना। उसी प्रकार से जब हम मॉस्को में थे रशिया में, तो सारे भक्त एक पार्क में गए थे, कि वहां बहुत उनका बड़ा मेला चल रहा था, बहुत मेला, और वहां किस प्रकार के लोग आते हैं, संसार में कैसे कैसे लोग हैं, सब बिल्कुल पशुतुल्य, किसी के इसमें कपड़े भी नहीं, माताजी प्रभु जी सब एक तरह के, और ऐसे वातावरण में उनको वहां प्रचार करना पड़ता है, प्राय वस्त्रहीन, और सब आकर वहां कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई दारू के बोतल लेके घूम रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, और उधर जाके भक्त लोग संकीर्तन कर रहे हैं। तो हम भी गए उनके साथ, उन्होंने बताया आओ चलो हमारे साथ, भी गए सब बैठे वहां पर, और फिर वहां संकीर्तन करके सब प्रभु जी माता जी साथ में नाच रहे हैं, सब ऐसे उनके उनके बीच में इनको रहना पड़ता है। देखिए कैसे कैसे परिस्थिति में लोग प्रचार करते हैं, हमारे यहाँ कितनी आसान परिस्थिति है, थोड़ा बहुत कुछ विरोध इधर उधर होता है तो हमारे रोना हम शुरू कर देते हैं, अरे इतना प्रॉब्लम है, इतना तकलीफ है, अरे वहां के लोगों को देखिए तो हमारी तकलीफ हम भूल जाएंगे, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ये सब, वहां कैसे कैसे परिस्थिति में उनको रहना पड़ता है। और फिर उस समय जब भक्त संकीर्तन कर रहे थे एक, तो दूसरा आया और कहने लगा तुम लोग क्या नाचोगे, हम लोग नाचने वाले हैं, क्यों वो लोग रात भर वो डिस्को में नाचते हैं ना, तो वो आदत है, तो वो संकीर्तन में नाचने लगे। फिर बोला तुम लोग क्या घास फूस खाने वाले हो, तुम लोग क्या नाचोगे, नाचेंगे तो हम लोग। तो भक्त ने कहा ठीक है देखते हैं कौन ज्यादा नाचते हैं, हम घास फूस खाते हैं ना, ठीक है देखते हैं। तो नाचने लगे और ये भक्त करते गए। तो साथ में वो आदमी था, वो भी सबको दिखाने के लिए, अपना दिखावे के लिए आया था, किया उसने 2-5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, फिर वो तो बिल्कुल ठंडा ही हो गया, वो तो गिर ही पड़ा नीचे। लेकिन भक्त नाचते ये लगातार 1-2 घंटे नाचने लगा वो, और सब खड़े वो लोग देखने लगे ये भक्तों की क्या विशेष शक्ति है, क्या है पता नहीं इनके अंदर, ये सब आध्यात्मिक शक्ति है भक्तों की, लोगों को पता नहीं चलता है। तो ये भ्रांति भी लोगों में है कि शाकाहारी खाने से क्या हम कमजोर बन जाते हैं, क्या दाल में प्रोटीन नहीं है, क्या जो भी भगवान ने दिया है, दूध है, दाल है, सब्जियां हैं, फल हैं, रोटी है, चावल है, ये सब खाने से हमें प्रचुर मात्रा में हमारे प्रोटीन विटामिन सब मिल सकते हैं, और पचाने के लिए भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। ये सब भ्रांतियां समाज में अभी बहुत प्रचलित हैं, इसलिए इनके खिलाफ हमें प्रचार करना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टि से। और भक्तों ने कई चार्ट भी बनाए हैं मेडिकल दृष्टि से, कि कैसे दाल में आप ये सब खाने से, शाकाहारी आहार लेने से भी वास्तव में आपको कोई कमी नहीं होती है इन चीजों के लिए, और बल्कि जब आप मांसाहारी पदार्थ खाते हैं तो आपके अंदर कितने सारे स्वास्थ्य की तकलीफें हो जाती हैं, आप तो आपके अंदर नाना प्रकार के रसायन, नाना प्रकार के विष उत्पन्न होते हैं शरीर में ऐसा करने से। और इससे अधिक लोग ये नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा पाप है ये, कि निस्सहाय जो मासूम पशुओं की हत्या करना कितना बड़ा पाप होता है, और ये हजारों की संख्या में करते हैं, हजारों की संख्या, कितने करोड़ों में पशु हत्या हो रही है हम कल्पना नहीं कर सकते। संसार में एक भी देश नहीं है जो कि शाकाहारी है, एक भी नहीं, एक भी शहर नहीं, एक भी गांव नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी हो केवल भारत में, और वो भी थोड़े जगह में, प्रांतों में शाकाहारियों की संख्या अधिक होती है, नहीं तो सब जगह धर्म के नाम पर, इसके नाम पर, उसके स्वास्थ्य के नाम पर, आगे प्रगतिशील समाज में होने के नाम पर कोई बहाना चाहिए जबा अपने जिह्वा को तृप्त करने के लिए, ये सब गंदी चीजें खाने के लिए। और कई लोग फिर मूर्खता से नाना प्रकार के तर्क भी करते हैं। वो कहते हैं हम तो केवल खाते हैं, हम कहां मारते हैं पशुओं को। अरे तुम खाते नहीं तो कोई पशु हत्या क्यों करता? तुम जाके खरीदते हो बाजार में से, इसीलिए तो लोगों को प्रेरणा मिलती है कि काटें, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा, उनके लिए धंधा हो जाता है। मनु संहिता में बताया गया है कि 6 प्रकार के लोग जो होते हैं उनको दंड मिलता है पशु हत्या के लिए। और वो कौन है? पहला, जो पशु हत्या के लिए अनुमति करता, अनुमति देता है। दूसरा, जो पशु हत्या करता है। तीसरा, जो पशु हत्या हत्यारे को सहायता करता है। चौथा, जो मांस को खरीदता है। पांचवा, जो मांस को खाता है। और छठा, जो मांस को पकाना हो गया, मांस को पकाता है। ये 6 चीज व्यक्ति जो हैं, इनको दंड मिलता है। तो देखिए, मांसाहार के लिए अनुमति देने वाले कौन कौन है? सबसे पहले नंबर किसका है? सरकार का है। और सरकार में जो भी लोग निर्णय ले रहे हैं ना, उनको पता नहीं कि उनको, वो शाकाहारी भी हो खुद, लेकिन उसका पाप का फल उसके सर पे आएगा, क्योंकि उसने अनुमति दी है कत्ल खाने खोलो। जितने सारे कत्ल खाने खोले हैं, शराब के अड्डे के लिए उन्होंने परमिशन दिया है, अनुमति दी है, सबके लिए वो पाप के भागीदार होंगे। और जो होटल में काम करते हैं, मांसाहारी लोगों को देते हैं, काटने वालों की बात दूर है, खाने वालों की बात दूर है, लेकिन जो सहायता करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अंडे ले जाते हैं इधर से उधर, मांस ले जाते हैं उधर से इधर, वो भी, उनको भी उसका फल मिलेगा। या जो विज्ञापन कराते हैं, मांस खाओ, अंडे खाओ, जो पेंटिंग करते हैं, सब इतने लाखों लाख करोड़ों लोगों को पाप लग जाता है इसकी वजह से, हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये तो मांसाहार की बात इतना हम करते हैं, इससे अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है, आध्यात्मिक कार्य नहीं है मांस नहीं खाना, कोई बड़ी बात नहीं है कोई शाकाहारी बन जाए तो, आजकल के हिसाब से, सभ्यता के हिसाब से बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आके कहे कि आज मैंने खून नहीं किया किसी का, कोई बड़ी बात है क्या? सभ्य समाज में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डाकुओं के समाज में बड़ी बात है। अगर डाकुओं के समाज में एक डाकू दूसरे को बोले भरे भाई आज मैंने खून नहीं किया, अरे क्या तुम्हारा दिन व्यर्थ गया आज, क्या क्या फायदा है तुम्हारे दिन का, तो उनके समाज में हो सकता है बड़ी बात है, लेकिन साधारण हमारे समाज में तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी प्रकार से बाहर के समाज में अगर कोई कहे कि मैंने आज शाकाहारी लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बड़ी बात है, लेकिन भक्तों के समाज में क्या है, हमारे लिए तो साधारण है। इसलिए सभ्य समाज को वास्तव में चाहिए, ये तो सबसे अआई की बात है, एक आधार है। और मांस न खाने से कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बनता, केवल वो पाप रहित हो जाता है। ऐसे पाप रहित अवस्था में थोड़ी बहुत उसकी बुद्धि अनुकूल होती है कि भक्ति मार्ग में वो चलने के लिए कुछ कोशिश कर सकता है। फिर आगे चल के जो वास्तव में जो आध्यात्मिक कार्य हैं, जैसे कि भगवान का नाम जप करना, श्रवण कीर्तन करना और भगवान की सेवा करना, ये सब चीजें फिर वो आरंभ कर सकता है। लेकिन मांसाहार नहीं करना और ये जो 4 नियम हैं, वो केवल हमें सत्वगुण तक लाने के लिए है। मांसाहार न करना ये भी एक भौतिक ही चीज है, ये सत्वगुण की बात है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो पाप बहुत करते हैं लेकिन शाकाहारी हैं। तो हम केवल शाकाहारी नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं कि हम केवल कृष्ण प्रसाद लें और अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करें। ये असली जीवन है। फिर हम समझ पाएंगे कि भगवान कौन है और हमारे मनुष्य की जीवन की सफलता हम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न टीका? कोई मध्य प्रदेश में है जहां अंडे भी वर्जित हैं, मतलब लोग नहीं, मतलब कानून के दृष्टि से नहीं, लेकिन लोगों ने अपना नियम बनाया होगा।
तो एक ही गांव का इसका नाम तो नहीं बन, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि ऐसा एक है गांव।
अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन अगर वहां कृष्ण भक्ति आई नहीं, अगर वहां कृष्ण भक्ति बहुत ही जल्दी अगर नहीं आई तो ये अवस्था भी टिकने वाली नहीं है, ये गारंटी की बात है। क्योंकि जो आजकल के युवा पीढ़ी है, अगर वो भी पालन कर रही है इस नियम का, आगे चल के जब वो बूढ़े बनेंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, वो अवश्य नहीं पालन करेंगे। खास करके जब टीवी में इतने सारे विज्ञापन देखते हैं, ये वो, तो करेंगे।
कभी कभी हम लोगों को किसी के यहाँ जाना पड़ता है, वो शायद ना हम जानते हैं नहीं जानते, वो अगर बाई चांस अंडे का या कुछ नॉनवेज का सेवन करते हैं तो उनके यहाँ हमको कभी कभी प्रसाद भी लेना पड़ता है, तो बहुत विकट स्थिति आ जाती है कि हाँ भी नहीं कह सकते और ना भी नहीं कह सकते, तो क्या करना चाहिए हमको? यानी हम स्थिति के बारे में टोटल अनभिज्ञ है नहीं कुछ,
मतलब वो आपको अंडे खिलाएंगे ऐसा?
नहीं नहीं अंडे नहीं, अगर उनके यहाँ कुछ वेज हम खाएंगे तो हम वेजिटेरियन ही, यानी बिना प्याज और लहसुन का ही, क्योंकि वो जानते हैं हमारे बारे में। लेकिन और दूसरी अन्य स्थिति में अगर वो इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं पहले, यानी उनकी अगर किचन या रसोई घर दूषित है, अगर इस तरह की स्थिति है, तो फिर हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए?
सावधान रहना चाहिए, बहुत होशियार रहना चाहिए। थोड़े फल भी खाएं, कंदमूल तो आजकल किसी के घर में होते नहीं, तो खैर फल तो खा सकते हैं। और उनको पता चलना चाहिए धीरे धीरे से कि जहां मांसाहार होता है हम उस घर में खा नहीं सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हम जो अभी बिजनेस करते हैं, और जो बिजनेस ऐसा है कि हम लोगों को रेस्टोरेंट्स ऐसा, और जो नॉन वेजिटेरियन जो रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं उनको कुछ हम चीज़ सप्लाई करना होता है, ऐसा हम जो उनको क्लोथिंग सप्लाई करते हैं, तो उनको एक सपोर्टिव ये हो जाता है ना, तो हमें
वैसे आजकल कलयुग में कोई भी कार्य नहीं है जिसमें पाप का स्पर्श नहीं होता। हर व्यवसाय में आजकल परिस्थिति ऐसी बन गई है, कोई भी कार्य नहीं है जहाँ के पाप आपको छूता नहीं है, बहुत विकट परिस्थिति है। लेकिन फिर भी हाँ, आप उनको सहायता कर तो रहे हैं, अभी क्या करें, तो शाकाहारी होटलों में दीजिए।
वैसे ये बिजनेस ऐसा है कि उधर ही ज़्यादा अपना बिजनेस होता है क्योंकि यूनिफॉर्म्स ऑलवेज नॉन वेजिटेरियन होटल में और बड़े बड़े होटल्स में ही होता है, तो डोंट हैव ऑप्शन।
खैर डायरेक्टली तो पाप है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, सोचिए इसके बारे में। तो यहाँ सुझाव है 50% मंदिर को दे दीजिए, तो वो पाप से मुक्त हो जाएंगे।
हरि बोल।
कहाँ से प्रश्न आया?
हरि बोल।
हरि बोल।
अभी आपने बताया कि जैसे बाजार में जो चीजें मिलती है वो एक्चुअली अवर्जित जो चीज़ें है वो बहुत है, लेकिन हम जो शक्कर है वो मंदिर में यूज करते हैं, तो वो कैसे गया? तो
अभी क्या करें, हर जगह ऐसा ही है। इसलिए अगर हम गुड़ का प्रयोग करें तो आजकल गुड़ में भी न जाने क्या क्या केमिकल वगैरह डालते हैं। वैसे देखा जाए तो एक ही हमारे लिए उपाय रह गया कि खुद हम खेती करें, उसमें गन्ना वगैरह डालें, गन्ने का रस निकालकर उसका गुड़ बनाएं या उसी का शक्कर हम बनाएं और फिर उसको इस्तेमाल करें। गोकुलधाम में करेंगे ऐसा सर, लेकिन जब तक कि वो नहीं बने क्या कर सकते हैं, या तो फिर हम मीठा खाएं नहीं, या तो फिर उसको स्वीकार करें, और क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं।
हरे कृष्ण। और एक वैसी चीज है प्रभु जी जो बाजार में मिलती है और वो हम मंदिर में भी यूज करते हैं, वो साबूदाना जो बोलते हैं वो गाय के चर्बी से बनाया जाता है बोलते हैं।
गाय के चर्बी से?
ऐसे हमने सुना है, देखा नहीं, नहीं,
नहीं
है।
नहीं नहीं नहीं, ऐसे सब ये ऐसे कोई गलत है बिल्कुल। साबूदाना कभी गाय के चर्बी से नहीं बनता। क्या होता है कि जब ये साबूदाना बनता है तो उसको कुचलते हैं, और उसमें कभी कभी या कीड़े वीड़े वो उसमें सब मर जाते हैं, तो उसको बनाने का की पद्धति होती है वो थोड़ी बहुत गंदी होती है, इसलिए उसमें न जाने थोड़े बहुत प्राणी भी आ जाते हैं, तो इसीलिए इसके